मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनो, अपने को राज तिलक देने के लायक बनो। हम यहां तेरे तेरे मुरली सुनने के लिए क्यों आते हैं? कौन बताएगा हमें? रिफ्रेश होने के और राजयोग सीखने के। राजयोग अर्थात एक ऐसी विधि जिससे हम राजा बनते हैं। हम किस किस चीज के राजा बनते हैं कौन बताएगा?
और
पहले तो हम स्वयं के राजा बनते हैं, हम आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म मेरे कर्मचारी हैं, जो मुझ आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों के राजा बनना। तीनों एक मत करने हैं, तीनों एक मत दुनिया में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, परंतु वो एक मत भी परमात्मा की मत। मैंने किसी डाकू का संग करके डाकू के सारी बातें सुनकर मैंने उसके संस्कार उनके विचारों के अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया, मैं एक मत हो गया, परंतु मैं डाकू की मत के अनुसार गया। मैं किसी गुरु के पास गया, उसने मुझे जैसे जैसे कहा मैंने उसके अनुसार अपने सारे विचार सारे संस्कार बनाए। जैसे अघोरी होते हैं, उनके अंदर उन्होंने जैसे उनका गुरु कहता है बस उसने वैसे करना है, उसे इधर उधर कुछ सोचना नहीं, उसे मालूम है कि गुरु ने जो कहा है वो फाइनल कहा है। उसके ऊपर ना परिवार का असर होता है ना दोस्तों का असर होता है, कोई असर नहीं होता, उनकी केवल एक ही होती है कि जो गुरु जी ने कहा है मुझे वो करना है। वो भी अपने आप को एक मत बनाते हैं, परंतु वे ना स्वयं के राजा बन सकते हैं, ना अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन सकते हैं, ना विश्व के महाराजा बन। और वंडरफुल बात यह है कि ये राजयोग सिवाय परमात्मा के और कोई सिखा नहीं सकता। और हमारे पास ये गलत फहमी आ गई कि गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है, गुरु ही परमात्मा से श्रेष्ठ। अब ये गलत फहमी ने हमें और भ्रमित कर दिया। तो अब परम पिता परमात्मा आकर कहते बच्चे अब मेरी श्रीमत पर चलकर अपने आप को तीनों राज तिलक देने के लायक बनो। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा और पढ़ाई भी सिर्फ और सिर्फ मुझ एक बाप से पढ़नी और किसी से नहीं। ये नियम दुनिया में और सभी पर लागू हो सकते परंतु आप पढ़ेंगे किससे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बात को भी ध्यान रखना है तब ये तीनों राज तिलक मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। प्रश्न किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। क्या याद रखें तो हम रावण पने की स्मृति से स्मृति को भुला देंगे। अभी हमें सारा दिन रावण की बातें याद रहे। इधर देखो उधर देखो चारों तरफ रावण का ही राज्य है। रावण ही सारे संसार को दुख देने वाले कर्म करा रहा है। ये रावण पन्ना बार बार आ जाता है। ये अभिमान बार बार आ जाता है। ये विकार बार बार आ जाते और आते सीधे सिंपल नहीं है पूरा तूफान लेकर के आते। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम गिरा देते नाक से पकड़कर गिरा देते गठर में डाल देते। हमें ये स्मृति ही ना आए ये सारे के सारे हमें भूल जाए विस्मृत हो जाए उसके लिए हम क्या याद रखें। सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हम आत्मा। ये स्त्री पुरुष आते ही माया का दरवाजा रावण का दरवाजा दरवाजा तो क्या पूरा तूफान खुल जाता क्योंकि 63 जन्मों से ये संस्कार बिगड़े हुए थे। अब हमें ये पक्का करना है अपने अंदर कि कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं ये मिट्टी के ढेले हैं ये लाठे हैं और आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है तो ये चलते फिरते हैं वरना ये लाठ कुछ नहीं। हम ना स्त्री हैं हम ना पुरुष हम आत्माएं हैं और ये सब आत्माएं अपनी अपनी गाड़ी में अपनी अपनी ड्रेस में घूम रहे। हम बड़े बाबा छोटे बाबा नहीं हाँ हम बड़े बाबा शिव बाबा के छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे वर्षा शिव बाबा से ले रहे हैं परंतु वर्षा छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ले रहे। छोटा बाबा बाप और बड़ा बाबा दादा बड़े पापा बोलते हैं। ये स्मृति रावण पन्ने की स्मृति को भुला देती जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती। जब ये स्मृति आ जाती है कि हम आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, वहाँ ना स्त्री है और ना ही पुरुष है, हम एक जन्म स्त्री बनते हैं, एक जन्म पुरुष बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म तक लगातार स्त्री या पुरुष रह सकते हैं, नहीं तो हर बार हमको बदलना। किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि मैं हर जन्म को एक पुरुष ही बनूंगा या स्त्री ही बनूंगी, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। पाठ के अनुसार चेंज होते ही रहना। परंतु इसमें मेहनत चाहिए, ये इतना सहज नहीं है, इसमें मेहनत चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आत्मा पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक या भ्रिकुटि में देते। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है, ये आत्मा की निशानी तो है, ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज तिलक चाहिए, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते, ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए, आत्मा जो यहाँ निवास करती है वे कहती है बाबा हम आपसे विश्व का राज्य स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे, अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं, आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है, बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार तो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े, हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं, वे है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है, ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, ये महिमा पक्की याद कर, भूलो नहीं, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वे बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती, अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ, ड्रामा में एक्टर को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही, ये कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं, मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते, भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए हैं, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्री मत पर लेने आए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कैसे भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में। हाँ जी, जो यहाँ संसार में सारी दुनिया काम में विकार में पड़ी हुई है, ये सबसे गंदी नदी है, जिसके कारण आदि मध्य अंत दुख पाती है। जिसके विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हम यह संसार में आकर इन विषय विकारों में ऐसे फंस गए कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर। ये है विषय वैतरणी नदी। ऊपर वो दिखाते हैं कि नर्क, जब कोई आत्मा मर्त शरीर छोड़ देती है तो यंग दूत उसे लेकर जाते हैं और रास्ते में एक खून से भरी हुई नदी होती है जिसमें पस होती है, कीड़े होते हैं, बिच्छू होते हैं, चिंदन होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं, जहरीले, जिसमें से उसे गुजरना पड़ता है। गर्व प्राण के अनुसार इस प्रकार से विषय वैतरणी नदी का बहुत ही भयानक वर्णन किया है। और जो गाय दान कर देते हैं उसके पिता को माता को जो भी है वो गाय जो है अपनी पीठ पर ले जाकर पार करती है, नहीं तो वे उस नदी को खुद तैर कर पार करता है। और वो जब उसको काटते हैं तो अपने बच्चों को गालियां निकालते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना धन छोड़ा और आपने हमें इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे लिए एक गाय दान कर दो ताकि मैं आराम से चला जाऊं। परंतु ये गपोड़ा है, ये झूठ है। वहाँ कोई ऐसी नदी नहीं होती जिसमें से आत्मा को भी बिच्छू सांप मगरमच्छ खाए, शरीर को यही खत्म हो गया। लोग बुद्धू बन के उसको समझ बैठे हैं। वास्तव में ये विषय वैतरणी नदी है। हम बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे कहते हैं तुमने पैदा क्यों किया, हमें शराब के लिए पैसे दो, हमें ऐश करने के लिए पैसे दो, तुमने अपने स्वाद के लिए हमें पैदा किया, हमारा बेड़ा गर्क किया, क्यों हमें संसार में लाए और अब हमें पैसे नहीं दे सकते हो। ऐसे चूहे चुभोते हैं बेचारे माँ बाप, तड़प तड़प के सारी जिंदगी रोते रहते हैं। ये है वो बिच्छू टिंडन बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे के सारे बाबा कहते हैं ये बिच्छू टिंडन है, मुरली के शब्द है, ये बच्चे क्या है, बिच्छू टिंडन, जो रोजाना डंक मारते हैं, माँ बाप की नींद हराम कर देते हैं, चैन हराम कर देते हैं, परिवार के लोग ले लो सारे बिच्छू टिंडन है। कोई किस प्रकार का बिच्छू है तो कोई किस प्रकार का बिच्छू है, जिसके अंदर हम ये संसार में पाठ बजाने ना आते, इस संसार के विषय विकारों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब के अंदर ना फंसते तो हम इन विकारों से मुक्त हो। देह में आकर के हम कितने एक दूसरे को दुख देते, कितना दुख देते हैं। अब हमें समझ में आया कि हमने किसी को दुख नहीं देना, दुख ही तो ये नरक है, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। ये संसार विषय वैतरणी नदी है और वो सुख का सागर है, स्वर्ग जो है वो सुख का सागर है, उसे गार्डन कहा जाता है, स्वर्ग का बगीचा, और ये है जंगल। हम पापी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे। अब कहते मेरे में कोई गुण नहीं है, अच्छा अब आपके अंदर गुण नहीं थे, इस नहीं है इसका मतलब पहले तो गुण थे ना। आप परमात्मा कहते मैं आया हूँ, तुम अपने अंदर फिर से उन गुणों को स्थापित करो, अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझ जाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल के साथ थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंदर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है, कितनी कितनी झूठ है। भारत ही सत्खंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सत्खंड किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या करते। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते, तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है, ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते हो, समझाते भी हो, परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है, तुम कितने थोड़े हो, तो भी आगे चल देखना कितने ठहरते, भाग जाएंगे। बाबा को पता था आगे चलकर देखना कितने ठहरते, कितने आते हैं कोर्स करते हैं और उसके बाद शक्ल ही नहीं दिखाई दे, कितने कोर्स करके चले गए, मतलब 2% 3% 4% बस रुकते हैं। इतने लोग कोर्स करके जाते, पर जितने आज ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर या क्लास करने वाले कहीं भी हैं, उसके कितनों को पहले कोर्स करने का जानकारी लेने का अवसर मिला। कितने हैं आते हैं, हमने जो ना ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना है, शिवानी बहन से सुना है, उधर से सुना है, हमारे परिवार वाले भी जाते हैं, मतलब सुना है कि बहुत अच्छा है, जानकारी उन तक पहुंची है, परंतु उन्होंने थोड़ा बहुत सुना जाना और उसके बाद बैठे हुए, रेगुलर स्टूडेंट नहीं बने। कौन है जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जाने। हम ब्रह्मा कुमारी में आने से पहले हम जानते थे कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बना दे, देखो हमें ब्रह्मा कुमारी के बारे में तो सब पता था ना, सुना तो हमने था ना, परंतु आए नहीं। इसी प्रकार से कितने लोग हैं जो छोड़ कर जाकर बैठे। हाँ जी वो जो भी है, मतलब कहने का भाई बहन वाली बात ले लो या कोई भी ले लो, मतलब कहने का मतलब कि वो कहते हैं कि तुम्हारी बहुत कठिन साधना है, हम ऐसा नहीं कर सकते, खान पान का तुम्हारा बहाना हर एक को रोकने के लिए बहुत है, वो विषय अलग है। मतलब कहने का ये है बाबा खुद कह रहे हैं आगे चल देखना कितने ठहरते, फिर मेला करते हैं कितने लोग आते हैं उसमें से ठहरते कितने। दादी प्रकाश मणि ने माँ दादी ने अनुभव सुनाया, अभी वो डॉक्टर साहब ने शरीर छोड़ दिया है, मतलब वो मेला किया, बताइए कि ये मेला इतना पैसा खर्च किया, इतना बेड़ा बड़ा मेला लगाया, उसमें से एक मिला, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है डॉक्टर ने। तो मतलब कहने का ये है कि मेला करने के बाद कितना मेले पर खर्चा होता था, और वो बेला किया और एक मिला। और कितने आए होंगे, कितने देश के गए, रुके कितने। हम प्रदर्शनियां करते थे, आजकल प्रदर्शनी बहुत कम होती है, कहीं कहीं कोई करते होंगे, बाकी आजकल सब आराम पसंद हो गए हैं हमारी तरह, घर बैठे रहो, क्या जरूरत है बाहर जाना, बाहर धूप में क्यों मरे, चित्र लगाएं, उनको समझाएं, गला खराब करें। पहले हम प्रदर्शनियां लगाते थे, पूरा सवेरे से लेकर शाम तक समझाना है, गला चौक हो जाए, फिर एक दो दिन चुप रहना है ताकि गला ठीक हो। अब हम आराम पसंद होंगे। ऑनलाइन तो चल रहे हैं, ऑनलाइन घर बैठे ना, बाहर जैसे आम जो दुनिया घूम रही है बेचारे, उनको हम
पकड़।
वो तो जो मतलब कहने वाला, पहले तो जो हमारा रूप रहता था अभी ठीक है, जो प्रदर्शनी लगानी है, बस एक ही नशा रहता था, प्रदर्शनी लगानी है और उनको पकड़ पकड़ के समझाना है, पर्चे बांट के आने में। अब वो काम हम नहीं कर पा रहे, खैर जो ड्रामा में है वही हम करेंगे, हम उससे अलग चल नहीं सकते। मतलब कहने का ये है कि कितने आते हैं और कितने कोर्स करके करेंगे। तो बाबा ने समझाया है, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज त्रिकुटी में दिखाते हैं कि आत्मा यहाँ है, छोटी सी है, इतनी छोटी है कि हम उन्हें आंखों से देख नहीं। और फिर बड़ी निशानी उसकी कि हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं, राज तिलक देते हैं। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है? बाबा आकर हमें बता रहे हैं कि हम अपने को राज तिलक कैसे दे सकते हैं। रंग वाला तिलक लगाने से, मिट्टी वाला तिलक लगाने से, या कोई और तरीका है? समझाते बच्चे, पहले तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते, वो रास्ता बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा की तीनों फैसल्टीज को अपने कंट्रोल में, मेरी श्रीमत पर उनको फिक्स करो, उनमें कोई और मत का असर ना हो, और किसी मत का, ना आपकी मत का, मन मत का, ना पर मत का। किसको याद है क्यों मन मत और पर मत के लिए मना किया? बाबा ने मन मत और पर मत के लिए क्यों मना किया, कौन बता सकता? मन मत और पर मत दोनों मिक्स करने के लिए मना किया। हमने एकांत वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छी बात हमें समझ में आई कि एकांत का मतलब है एक के अंत, और एक के अंत में भी कंपल्सरी है परमात्मा के अंत में, किसी और आत्मा के अंत में नहीं, और अकेले अकेले भी नहीं। बाबा यदि साथ नहीं है तो एकांत नहीं है। एकांत की तो परिभाषा ही बदल दी है कल से। जिसको याद है क्यों मना किया है बाबा ने, मन मत और पर मत को घुसने ही नहीं देना, उनके साथ रहने का मतलब एकांत नहीं है। मैं यदि किसी एक आत्मा के साथ हूँ तो भी एकांत नहीं। हाँ जी,
वो एकांत नहीं है, एक तो वो देशानियों का मत है, दूसरा वो कंप्लीट नहीं है, उनमें भी किसी न किसी का
फिक्स है। कोई भी आत्मा, लाइन सीधी बाबा ने सीधा स्पष्ट कर दिया, संसार की कोई भी आत्मा जो इस संसार में आ गई है, जो जन्म मरण के चक्कर में आ गई है, उसने अपने आप को क्या किया है, खाली किया। उसमें ज्ञान का अभाव आया, प्रेम का अभाव आया, शांति का अभाव आया, पवित्रता का अभाव आया। अब जब अभाव आया, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूं, तो मैंने गूगल को अपना साथी बनाया, मैंने दुनिया भर के लोगों को अपना साथी बनाया। हम उनसे जाके पूछते हैं क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, वो सारे अपनी अपनी राय देते हैं, वो राय भी हमारे अंदर आ जाती। इस प्रकार सारे मनुष्य अधूरे होने का कारण उन्होंने अनेकों की मतें अपनी बुद्धि में भर के रखी है। वो गुरु की मतें हो सकती हैं, वो अपने माता पिता की सलाहें हो सकती हैं, वो दुनिया भर की लिटरेचर को पढ़कर अपनी सलाह बनाई होंगी, दुनिया भर की फिल्में देख करके सलाह बनाई होंगी, जहां जहां से उनको जो खाली था जगह उस जगह को भरने के लिए उन्होंने अनेक लोगों के विचार अपनी बुद्धि के अंदर भर रखे। वो अकेला नहीं है। आज यदि मैं अपने आप को देखूं, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने दुनिया भर में क्या क्या शास्त्र पढ़े, क्या क्या पढ़ा, उनकी मतें भी मेरे अंदर घुसी पड़ी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता या परमात्मा की बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं किसी न किसी शास्त्र की, किसी गुरु जी की, किसी की मत पर अपनी समस्या का समाधान कर देता, तो मैं अधूरा हो गया। और मेरे साथ अनेक हो गए ना, मुझे सलाह देने वाले अनेक है ना। जब मेरे को केवल परमात्मा की सलाह के कोई और मेरे को याद ही नहीं है, मुझे कोई याद ही ना आए पुराणों की बात, शास्त्रों की बात, मुझे सिर्फ एक परमात्मा की बात को समझना सकता बात, ये जानने के लिए ठीक है, किसी को समझाने के लिए ठीक है कि मैं उन्हें समझा सकूं कि ये शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, इसका सही अर्थ ये है, वो एक अलग बात है, परंतु मैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करूँ। मेरे अंदर भरे हुए तो है ना, वो सारे के सारे निकल जाए, सारी मतें निकल जाए, तब मैं एकांत, क्योंकि मेरे को बहस करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते मन मना भाव करो, मुझे बहस करनी पड़ती है। अच्छा उसमें तो ये लिखा है और बाबा कह रहा है ये, अब इन दोनों में से ठीक कौन सी है। अब ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, मेरे को युद्ध करना पड़ रहा है ना, मुझे वेदों की बात पर, शास्त्रों की बात पर, परमात्मा की बात पर फैसला करना पड़ रहा है कि ये करूं कि ये करूं। ये फैसला नहीं करना पड़े, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, जो बाप ने कहा वो मैं बस, मैं क्यों क्यों किसी की बात सुनूं, किसी और की तरफ मैं देखूं क्यों कि कोई और है। सब एकांत, एक बात हम अपनी बुद्धि को समझा दे, केवल हम उसी पर चले कि बाबा ने जो कहा है मुझे वो कर, बस। मैंने और कोई कुछ भी कह रहा है उससे मुझे कितना भी फायदा दिखाई दे रहा है, मैंने उसकी बात सुननी नहीं है, देखनी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें, इतने में तो काम हो जाए, जितना सोचने में लगा दिया। हाँ, क्या हो सकता है बाबा का कहना मानने से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, शरीर छूट सकता है, वो तो छुड़वाने आया है, कल का छूटता आम छूट गए भाई। बाबा का कहना मानने से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, जो हम सारी दुनिया चैलेंज करते हैं, दुनिया को मार डालेगा ना, ले मार डाल, और तेरे पास है क्या करने के। तो शिव बाबा कहते मैं तो तुम्हें मारने आया नहीं, मैं तो तुम आत्मा अमर आत्माओं को अपने साथ ले जाने आया हूँ, छोड़ो इस शरीर को, चलो मेरे साथ, खत्म ना, क्या मरना, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता, शरीर को छोड़ना है, डर तो तभी जाएंगे सब शरीर को छोड़ेंगे, और शरीर को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब बराबर है, इसलिए शरीर में फंसे हुए, इसलिए हमारा कर्मों का हिसाब किताब बराबर करवाने के लिए बाबा वेट कर रहे हैं, वो समय तक हम सबको कर ले जाए। वो रास्ता बताते हैं, उसका नाम रख दिया है राजयोग। जो रास्ता परमात्मा आकर बताते हैं उसका नाम है राजयोग, और जो सिवाय परमात्मा के और कोई सिखला नहीं, सिखलाने वाला है बाप, श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, श्री कृष्ण हमारा बाप हो कैसे सकता है, सीधा चैलेंज करना, वे तो खुद बच्चा है, फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, दुनिया वाले तो वो भी स्वयंवर नहीं दिखाते, ये भी बाबा ने आके कहा कि राधा के साथ उसका स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा, बाकी श्री कृष्ण की इतनी रानियां आदि देवी हैं, ये सब झूठ, 16,108 रानियां और एक एक से 10-10 बच्चे ऐसा गपोड़ा मारा है कि कृष्ण तो भाई क्या था, वो 16,108 रानियां रख सकता है, हमने यदि 2-4-5 रख ली तो क्या फर्क पड़ गया, हमने कौन सा पाप कर लिया। मतलब ऐसे गपोड़े जिसके कारण कृष्ण के चरित्र पर ऐसा दोष लगा दिया जो दुनिया में कोई हटा नहीं, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम कैसे आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर से और दूसरा लेती हैं, ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ उनको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और बच्चे को याद करो। तुम दाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम शरण में सुख गनेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख गनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, बाजी रस तो मनुष्य का व्रत है ना, उसमें परम पिता परम आत्मा विराजमान होते हैं, परंतु रस का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो नाम है ब्रह्मा, उस रस का नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो, बाप बहुत अच्छी रीति समझ जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे, तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जब की स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जानी चाहिए ना। इसमें मेहनत है, मेहनत बिगर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं उनको ही याद करते, हम बाबा के बने हैं, हमने तो बाबा को ही याद करना है। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकार में विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी घड़ी पुनियाद, क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको ये पढ़ाते हैं, अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बाप बच्चों बच्चे बच्चे कहे सम जाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं वी आर नो इट, ये भी अभी की ही बात है, ये भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए, वेद तो उठाए ना उठाए, वो तो उनके ऊपर, कोई ज्ञान को समझे ना समझे, चले ना चले, या उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा, कोई भी दुनिया का शास्त्र भक्ति का कोई अंश की भी बात सतयुग में नहीं। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र है और भक्ति के अंदर ज्ञान रिंचक जरा सा भी ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में से भक्ति रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है, सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता है। अभी बाप द्वारा तुम सच्चे बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो, बाप ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था, 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था, फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं, बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्री मत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं उनका रथ हूँ, मैं उनका बैल नहीं हूँ, बलियारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, कुर्बान तो तुम्हारी है, वैल्यू तो तुम्हारी है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं भगवान आके तुम्हें पढ़ाते हैं तुम्हारी कितनी वैल्यू है, मैं तो सुन लेता हूँ, मेरे को नहीं पढ़ाता। हाँ तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं बैल नहीं हूँ, बलियारी सारी तुम्हारी है कि तुम्हें आके बाबा पढ़ाता है और तुम्हारे कारण मैं सुन लेता। ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है, कैसे हमारे को मक्खन लगा रहा है ब्रह्मा बाबा भी, ये बाबा तो लगाते लगाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कि बलिहारी कुर्बान तो मैं तुम्हारे ऊपर जाऊं कि तुम्हें भगवान आके पढ़ाता है और जिसके कारण मैं सुन लेता हूँ, तुम्हें पढ़ाने ना आवे तो मैं कैसे सुन। समझ में आ रही है ब्रह्मा बाबा की बात, कैसे कैसे बाबा बातें करते हैं। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ, मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, मुझे अकेले को नहीं सुनाते, वो तुमको सुनाते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, तुमको सुनाते हैं मैं भी सुन लेता हूँ, ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी पुरुषार्थी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को देखो खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग का राजकुमार राजकुमारी बनने के। राजयोग है ना, ये क्या है, ये राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, अंदर में क्या होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते, बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, या ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। ये तो बात सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी ये बनने के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल, दिल होल माना दिल शिकस्त मत बनो, दिल शिकस्त माना मेरे बस का नहीं, कर तुमने करना है तो मत बनो, बहुत बड़ी लाठी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भगंती हो पढ़ाई को छोड़ देते, समझते हुए कि भगवान आके पढ़ा रहा है प्राइड छोड़ करके माया कितनी प्रबल है, अज्ञानता माया माना अज्ञानता कितनी प्रबल है, सच पता नहीं लगा, सच समझने नहीं दिया माया ने और वो छोड़कर चला। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक, अपने को राज तिलक देने के लायक बनना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रायल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकर नहीं बनना, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकर नहीं बनना। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भाव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना। मन बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बना। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावन हार है। करण हार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चला, सही रास्ते पर चला। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और सिक्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, पर्सनैलिटी का करो धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो फाउंडेशन, लेकिन साथ में और चार भी हैं, क्रोध और सभी साथी हैं, जो हैं उन महाभूतों का त्याग साथ साथ उनके भी, जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग कर। काम क्रोध लोग वो बड़े बड़े हैं, तो जो छोटे छोटे भी हैं ईर्ष्या बदले की भावना चेष्टापन निराशा, इनको भी सबको खत्म, उनका कोई वंश ना रहे, उनका भी त्याग करो। सब कहेंगे क्या कहेंगे, प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण, पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी धारण। अच्छा ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम